हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंदर कमरे में जाते ही माधवी की नज़र सीधा रूहान पर गई, जो अब अपने बेड पर आरती पलटी मारकर बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था, जिसमें बहुत तेजी से उंगलियां चल रही थीं। शुगर उसकी गोद में गहरी नींद में सो चुकी थी। रूहान ने जैसे ही अपने कमरे के गेट पर कदमों की आहट सुनी, उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा, ये सोचकर कि अनाही आई होगी उसे डिनर के लिए बुलाने को, क्योंकि अब तक अनाही के व्यवहार से रूहान को यही लग रहा था कि वो काफी ज्यादा केयरिंग लड़की है। पर सामने माधवी को देखकर कहीं ना कहीं रूहान के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट आ गई। वही माधवी जो उम्मीद कर रही थी कि रूहान उसको देखकर खुश हो जाएगा, उसका लटकता चेहरा देखकर माधवी हैरानी से अपने मन में बोली, ये क्या हुआ? ये तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और क्यों? आखिर वजह क्या है इसकी? फिर उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाते हुए रूहान के सामने जाकर अपने हाथ में पड़ी प्लेट बेड पर रखते हुए कहा, साहबजादे, अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल ही चुके हो। खाना खाने क्यों नहीं आए हमारे साथ? हम सब लोगों ने खाना खा लिया, फिर मैंने नोटिस किया कि आज तुम नहीं आए हो। फिर न मुझे लगा था नई नवेली दुल्हन बाकी कोई काम करेगी या नहीं, पर तुम्हें खाने के लिए तो जरूर ही पूछ लेगी। इसमें कौन सा उसकी जबान घिस जाएगी? इतना बोलकर माधवी रूहान के सामने बैठ गई और फिर एक निवाला निकालकर रूहान को खिलाते हुए बोली, मैं नहीं चाहती तेरी ये गबरू जवान जैसी बॉडी कुछ ही दिनों में तुम्हें मैरिज से दिखने लग जाए, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी पर कुछ नहीं छोड़ने वाली हूँ। चुपचाप मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रूहान का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। उसे देखकर माधवी को जरा सा भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि रूहान फिलहाल क्या सोच रहा है। उसने दूसरा निवाला रूहान को खिलाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम मुझे बोलेगा अब मेरी शादी हो गई है तो मेरे कमरे में आने के लिए अपॉइंटमेंट लो, या फिर ऐसा कि हफ्ते में एक ही बार मेरे कमरे में आओ। मैंने सुना बटलर से कि अनाही को काफी प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। रूहान ने अपने मुंह का निवाला निकालते हुए कहा, ताई जी, आप भी कैसी छोटी छोटी बातें लेकर बैठ गई हो, आपको रोकने वाला कौन है? लेकिन अगर मैडम जी को इससे कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जैसे कि अगर मुझे कभी आपकी याद आएगी तो मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगा, बाकी मैं उनसे पूछ लूंगा एक बार। और यही बात खान की, तो मुझे लगता है वो ऑफिस में काम करके बहुत ज्यादा थक गई होंगी, इसीलिए आते ही फॉर डिनर करने लग गई। शायद माधवी ये बात रूहान को कल से पहले बोल देती तो उसकी पैन तारा जरूर काम कर जाता, लेकिन कल रात को जिस तरह से अनाही ने रूहान का ख्याल रखा था, रूहान की तो बिल्कुल नहीं मान सकता था कि उसकी पत्नी उसकी केयर नहीं करती है, या फिर उसे कोई मतलब ही नहीं है कि रूहान खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। अपनी चाल को इतनी जल्दी फेल होता देख माधवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा, जैसे अनाही नाम की मुसीबत उसे पूरी तरह बर्बाद ही कर देगी। उसने रूहान को और खाना खिलाते हुए कहा, हाँ, ये बात भी सही है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा थकी हुई हो, और पैसे भी इंसान सबसे पहले खुद को देखता है। जो खुद को ना देखकर किसी और को देखता है, उसके आज के दिन कैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन अब मैं तुम पर बड़ा हक नहीं जता सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो ना। इतना बोलने के साथ ही माधवी का गला भर आया था, फिर रोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मासूम रूहान को लग रहा था उसकी ताई को सच में बुरा लग गया है। रूहान ने जल्दी से खान की प्लेट दोनों के बीच से हटाई और माधवी के गले लगाते हुए बोला, ताई जी, आप क्यों इतना सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अगर आपने मुझे सगे बेटे से ज्यादा माना है तो मैं भी आपको माँ से बढ़कर मानता हूँ। मेरी जिंदगी में आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। ना चल कोई था ना आज है, और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि आगे भी कोई नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ आप हो। उसके ऐसा बोलने से माधवी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगाकर कहा, बस एक इसी उम्मीद पर मेरी लंबी उम्र होती जा रही है। जब जब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सही परवरिश की है, तब तक मेरा खून डबल हो जाता है, और देखो मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाती हूँ, अपने बेटे का पहले से ज्यादा ख्याल रखने के लिए। माधवी ने बड़े ही प्यार से रूहान को कुछ करते हुए कहा, जिससे रूहान और भी ज्यादा खुश हो गया। कुछ ही पलों बाद माधवी ने पूरा खाना रूहान को खिला दिया था, जिसके साथ ही उसने आखिरी बार रूहान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ आराम से सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। रूहान ने भी मुस्कुराकर माधवी को गुड नाइट कहा और माधवी वहां से चली गई। माधवी के जाने के बाद रोहान अनाही के बारे में सोच रहा था। सच में उसे भी अजीब लग रहा था कि अनाही ने क्या उसके बारे में एक बार भी नहीं पूछा कि उसने रात का खाना खाया या नहीं। कुछ सोचकर उसका मन पूरी तरह तड़प रहा था। कल वाली अटेंशन उसके दिल को इतनी भाग गई थी कि उसे अब उस अटेंशन की क्रेविंग हो रही थी। कहीं दूसरी तरफ वेदांत खाना खाकर पहले अपने कमरे में जा चुका था। वो रूम में इधर उधर टहलते हुए विहा का इंतजार कर रहा था और उसे भी नहीं पता आखिर वो उसका इंतजार क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो कुछ खास उनके बीच रिश्ता भी नहीं है। वहीं विहा भी निवेदिता और अनाही से कुछ बात करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही थी। इन पीरियड्स को भी अभी आना था, अब मैं कैसे संभालूंगी? अच्छा हुआ पेट्स तो मैं ले लिए, लेकिन सोफे पर कैसे एडजस्ट होगा? और अगर कहीं दाग लग गया तो संविधानी किसे क्या कहेंगी? अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी नानी रोनी शक्ल बनाकर मन ही मन भगवान को याद किया और फिर दरवाज़ा खोल देगी। उसकी नज़र सीधा वेदांत पर गई, जो बैठ के इधर उधर चक्कर लगा रहा था, जिसे देखकर विहा ने आंखें छोटी करके कहा, वेदांत, आपका कुछ हो गया है क्या? आप ऐसे घूमते हुए क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ? विहा की आवाज़ सुनकर वेदांत एकदम से हड़बड़ा गया और फिर जल्दी से अपनी स्लीपर उतार कर बेड पर लेटा और कम्फर्टर से अपनी हाफ बॉडी कवर करते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं गुम हुआ है। वो बस मुझे लाइट अच्छी नहीं लगती है, मेरी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब तुम जल्दी से सो जाओ, फिर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो मुझे भी नींद आ जाएगी। विहा ने छोटा सा मुंह बनाकर अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए और फिर सोफे पर दम से बैठते हुए बोली, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली है। विहा को समझ नहीं आया आखिर विहा ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि पिछली दो रात तो वो बिल्कुल गधे घोड़े बेचकर सोई है। उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो कुंभकर्ण की वंशज हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें तो हर कंडीशन में नींद आ सकती है। अब ज्यादा बकवास मत करो और सो जाओ। इतना बोलकर वेदांत ने लैंप ऑफ कर दिया। वहीं विहा भी सोफे पर लेट गई और अपने पेट को आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए बोली, एक तो पेन किलर नहीं मिल रही मुझे, भगवान कैसे नींद आएगी, यहाँ तो मैं बाहर घूमने भी नहीं जा सकती हूँ। घर में तो जब मन की याद अब गार्डन में घूमने चली गई, अब यहाँ मैं इनको कैसे करूँगी कि रात को मुझे गार्डन में घूम के आना है? कहीं इनका लगेगा कि मेरे अंदर किसी आत्मा का वास तो नहीं है, अच्छी चीज क्या सोच रही हूँ मैं।
विहा खुद में बड़बड़ाते हुए सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहीं उसके बाद बड़ा है अब वेदांत को भी सुनाई दे रही थी और वो गौर करके ये जानने की कोशिश कर रहा था फिर भी हाँ क्या बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ अनाही भी कमरे में जाती है। उसके जाते ही उसकी नज़र बेड पर बैठे रुहान की तरफ जाती है।